दिन भर 24 अप्रैल दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 24 सुरक्षा कर्मियों की मौत।
12 बजे की घटना है, लगभग बताया जा रहा है। वो बंदूक लगा करके नक्सलियों ने घात किया है और उसमें बम विस्फोट के कारण घटना घटी है।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात।
पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एलके अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 24 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में 6 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ के जवान सड़क खुलवाने के लिए जा रहे थे। रायपुर से आलोक पुतुल।
सुकमा जिले के चिंतागुफा इलाके में माओवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 24 जवान मारे गए हैं। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने मारे गए जवानों की संख्या और अधिक होने की आशंका जताई है। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह अपना दिल्ली का दौरा रद्द कर रायपुर लौट रहे हैं, जहां उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई है।
इधर भारत प्रशासित कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने पीडीपी नेता अब्दुल गनी डार की गोली मारकर हत्या कर दी है। पिछले 2 हफ्तों में वो तीसरे नेता हैं जिनकी चरमपंथियों ने हत्या की है। पहले से ही तनाव का सामना कर रही कश्मीर घाटी में हालात और गंभीर हो गए हैं। पिछले दिनों सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 8 किशोर बच्चों की मौत हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। अफगानिस्तान में सशस्त्र सेना पर तालिबान के हमले के बाद देश के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को हुए इस हमले को दशक भर से ज्यादा समय में सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। अभी तक ये साफ नहीं है कि मजार शरीफ के पास सेना के अड्डे पर हुए हमले में कितने लोग मारे गए हैं। कुछ खबरों में इनकी तादाद 200 तक बताई जा रही है। हमले के बाद सैनिक अड्डे के पास गए बीबीसी संवाददाता ने बताया कि दीवारों पर गोलियों से छेद बन गए हैं और उन पर खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। तालिबान लड़ाकों ने सेना की वर्दी पहनकर हमला किया, इसकी वजह से सैनिकों के लिए ये पहचान करना मुश्किल हो गया कि कौन उनकी तरफ है। अफगानिस्तान में अमरीकी सेना के शीर्ष कमांडर जनरल जॉन निकोलसन ने कहा है कि इस हमले ने बता दिया है कि तालिबान अनैतिकता में और नीचे स्तर पर चले गए हैं।
The level of barbarity and cruelty, killing young soldiers.
ये बर्बरता और क्रूरता की एक नई हद है। युवा सैनिकों को मस्जिद में नमाज के दौरान मारना, उन लोगों का रवैया बहुत निचले स्तर का है। यही वजह है कि अफगान लोगों ने तालिबान को खारिज कर दिया है और वो नहीं चाहते कि वो शासन वापस आए। अमरीकी फौज के कमांडर जॉन निकोलसन के शब्द। इस हमले के बाद अफगानिस्तान के लोगों में काफी नाराजगी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की एक अदालत ने यूरोप में टेक्नो म्यूजिक के सबसे बड़े आयोजन लव परेड के आयोजकों को नरसंहार और लापरवाही का दोषी माना है। 7 साल पहले यहां एक हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी। ये लोग वहां मची भगदड़ के बाद गेट के पास की एक सुरंग में दबकर कुचले गए थे और फिर इनकी मौत हो गई। ड्यूसेलडॉर्फ की अदालत ने कहा है कि दोषी ठहराए जाने लायक पर्याप्त संभावनाएं हैं। इससे पहले निचली अदालत ने यह मामला बंद करने को कहा था। कोर्ट के फैसले के बाद अब कार्यक्रम के आयोजक यूर्गन ड्रेसलर और उनके 5 कर्मचारियों पर ड्यूसबर्ग की अदालत में मुकदमा चलेगा। जुलाई 2010 में यहीं पर लव परेड के दौरान हादसा हुआ था। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में अब 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है और अगले महीने दूसरे चरण का मतदान होगा। राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल 9 दूसरे उम्मीदवारों को देश की जनता ने खारिज कर दिया है। उदार मध्यमार्गी इमैनुएल मैक्रोन को पहले दौर में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। प्रवासी विरोधी धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ली पेन ने बिना समय गंवाए अपने प्रतिद्वंदी मैक्रोन की आलोचना की है। मरीन ली पेन ने सुरक्षा मामलों में मैक्रोन के रिकॉर्ड को कमजोर बताते हुए कहा है कि उनके पास फ्रांस के लोगों को इस्लामी आतंकवाद से बचाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। उधर यूरोपीय नेताओं ने मैक्रोन का समर्थन किया है और यूरोपीय बाजारों ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। मलेरिया का सबसे पहले टीके का इस्तेमाल घाना, केन्या और मलावी में शुरू किया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करके रेहान फदल का। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 24 जवान मारे गए हैं। हमले में कुछ अन्य जवान घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जाती है। ये जवान सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम आवास पर अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
सुकमा जिले के चिंतागुफा से बुरकापाल तक सड़क बन रही है, जिसमें लगे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। दोपहर 1 बजे के आसपास जब जवानों की एक टुकड़ी रोड ओपनिंग के लिए निकली हुई थी, उसी समय माओवादियों ने हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला और 24 जवान मौके पर ही मारे गए। मारे गए जवानों का हथियार भी माओवादी अपने साथ लूट कर ले गए हैं। पिछले महीने भी इसी इलाके में माओवादियों के हमले में 12 जवान मारे गए थे। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रामसेवक पैंकरा का कहना है कि माओवादियों पर दबाव बढ़ा है, इसलिए हमले तेज हुए हैं। लेकिन राज्य में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल का कहना है कि यह हमला राज्य सरकार की विफलता का परिचायक है। इन आरोपों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह अपना दिल्ली का दौरा खत्म करके अब से कुछ ही देर बाद रायपुर लौटने वाले हैं। उन्होंने सरकार की एक आपात बैठक बुलाई है। संकट यह है कि माओवादियों के हर हमले के बाद ऐसी बैठकें होती हैं, व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात होती है और इन बैठकों में लिए गए फैसलों पर कार्रवाई से पहले ही माओवादियों का दूसरा हमला हो जाता है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव ने सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह से संपर्क किया और पूछा कि आखिर इस तरह के हमले बार बार क्यों होते हैं।
बार बार होने के तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, पर दो तीन बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात तो भारत सरकार की तरफ से ये जो संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि इस समस्या पर हम हावी हो गए हैं और ये समस्या खत्म पर आ रही है, 5 साल में इसका पूरा उन्मूलन हो जाएगा, ये बात गलत है। और इस तरह की जो बात कहते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया नक्सलियों में भी होती है और वो कम से कम कोई ऐसी घटना करके दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, हमारे में अभी भी शक्ति बची हुई है, प्रहार की शक्ति है और हम आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमला कर सकते हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। दूसरी जो मुख्य बात यह है कि देखिए 24 के सीआरपीएफ के जवान मारे गए, परंतु राज्य पुलिस का एक भी कर्मी घायल होने की भी बात नहीं है, मरने की तो बात दूर रही। एक बहुत बड़ी कमी जो हमारे ऑपरेशंस में है वो राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों में जो समन्वय, जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। और राज्य पुलिस को जो जितना मिलजुल कर काम करना चाहिए केंद्रीय बलों से, वो भी वो नहीं कर रहे। ऐसी लड़ाई में सफलता तभी मिलती है जब राज्य पुलिस लड़ाई में अग्रणी रहे, आगे रहे, मुचैठा ले और केंद्रीय बलों का समर्थन हो, परंतु यहाँ एकदम उल्टा हो रहा है।
जी सिंह साहब, एक आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। दरअसल 2010 में भी 76 लोग मारे गए थे इसी तरह के एक हमले में और वो भी दंतेवाड़ा में हुआ था। तो क्या राज्य पुलिस या प्रशासन जो है सरकारें उससे सबक नहीं ले पा रही, आखिर अड़चन कहाँ पर आती है?
नहीं, सबक तो खूब ले रहे हैं, खूब अकल की कोई कमी नहीं है, पर वो सब दे आर प्लेइंग सेफ कि भाई कौन इस लड़ाई में कौन पड़े अपना, ठीक है केंद्रीय बल आ रहे हैं, इनको लड़ने दो, मरने दो, हम अपना हिफाजत से रहे और हम तो जो डेवलपमेंट का पैसा आ रहा है उसमें खाने पीने का जो हिसाब है हम वो करते रहेंगे। आज का अफसर तो ऐसा हो गया है कि उसको मतलब सामान्य अफसर, ठीक है 10% अफसर अभी भी, 15% अभी भी बड़े अच्छे हैं, मोटिवेटेड हैं, पर ज्यादातर अफसर ऐसे हैं कि इनको अगर चाबुक नहीं लगे तो ये काम नहीं करेगा।
एक आखिरी सवाल सिंह साहब की, केंद्रीय सरकार की तरफ से तमाम नीतियां बनी हैं, एक बार पॉलिसी ऐसी बनी कि उनको टॉक्स की जाए, एक बार हुआ कि बातचीत नहीं होगी, फिर एक बार कैरेट एंड स्टिक टाइप की बातें हुई, लेकिन दरअसल तरीका क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए?
देखिए अभी तक बड़े दुर्भाग्य है कि माओवादियों से निपटने की नीति परिभाषित किए जाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। मैंने ये बात मनमोहन सिंह के सामने उठाई थी और उन्होंने मेरे सामने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से कहा था कि हाँ माओवादियों से लड़ने की क्या नीति होनी चाहिए, इसको कोडिफाई करिए, पर कोडिफाई करने का कोई प्रयास हुआ नहीं। और मैंने जब थोड़ा पहल की तो मुझे रोक दिया गया कि नहीं अभी आप रुकिए, अभी आप जब इसकी जरूरत होगी तो आप बताया जाएगा। तो हमारी पॉलिसी जो है, देखिए अलग अलग राज्य सरकारें हैं, वो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सीधी सी बात ये है। कोई ऐसी नीति नहीं है जिसको हम ये कहें कि यही नीति छत्तीसगढ़ में, यही नीति महाराष्ट्र में। जिस राज्य सरकार का जैसा आकलन है, जैसा असेसमेंट है, उसी के हिसाब से वो पॉलिसी बनाते हैं।
ये थे सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह।
75 वर्षों से आपके साथ।
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत में कश्मीरी युवाओं के खिलाफ कथित तौर पर बढ़ते हुए हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो कश्मीरी विद्यार्थियों की सुरक्षा का ख्याल रखें। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि राज्य सरकारें समय समय पर कश्मीरी विद्यार्थियों से संपर्क करें। उधर आज प्रधानमंत्री और महबूबा मुफ्ती के बीच मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए पहले माहौल बनाने की जरूरत है। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
रविवार को नीति आयोग की सभा के दौरान महबूबा मुफ्ती ने भावुक होकर कहा कि भारत में पढ़ने वाले कश्मीरी युवा आपके ही बच्चे हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए। उधर हाशिम सोफी नामी एक विद्यार्थी को उस समय पिलानी में अपनी संस्था को छोड़कर कश्मीर वापस लौटना पड़ा जब किसी ने कथित रूप से सोफी की शर्ट और दरवाजे पर भारत छोड़ने की धमकी भरे नारे लिखे थे। हाशिम सोफी बिट्स पिलानी में पीएचडी करने गए थे। वो अब इस वक्त अपने घर श्रीनगर में हैं, जहां से उन्होंने बीबीसी को ये बताया।
बात ये भी है कि हाल ही में ना मेवर में जो इंसिडेंट हुआ था, कुछ दिन ही हुए थे मेवर के इंसिडेंट को, वो भी राजस्थान में ही है। तो मैंने पापा को फोन किया, घर वालों को फोन किया, तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी आप जो भी है बाद में आप डिसाइड करना कि क्या करना है, अभी आप घर आ जाओ पहले, क्यों तुम्हारी रिसर्च के काम से बड़ी तुम्हारी जिंदगी है, फिर जब जिंदगी नहीं होगी तो फिर क्या करोगे। कि जब लड़के ऐसा लिख सकते हैं तो कर भी सकते हैं, मे बी तुमने दरवाजा खोल के रखा होता तो मे बी वो कुछ भी कर सकते थे। एक तो फियर, एक तो डर की बात थी, ये मैं इतना नहीं कर सकता, और दूसरी ये भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होती है, कोई चीज होती है कि जब जहाँ पे आप काम करोगे आप अगर डिग्निटी के साथ रह नहीं सकते हो तो फिर क्या फायदा उस चीज को करने का। इंसान थोड़ी सब कुछ पैसों के लिए करता है, लाइफ में रेस्पेक्ट भी तो अर्न करनी होती है। अब जब तुम्हें ऐसी लैंग्वेज तुम्हारे लिए कोई इस्तेमाल करता है तो मैंने सोचा अभी ठीक है मैं घर ही चला जाता हूँ।
अभी क्या इरादा, वापस जाएंगे या अब वहाँ पर वापस जाने का इरादा नहीं है?
नहीं नहीं नहीं, प्लान ही तो मैं वापस जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहाँ जैसे हालात है मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई लिख भी सकता, और राजस्थान एज पर्टिकुलर में बात करता हूँ कि राजस्थान तो नहीं जाऊंगा नहीं।
पिछले कुछ हफ्तों में भारत पढ़ाई करने आए कश्मीरियों पर हमलों में कथित तौर पर बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कुछ लोगों ने 6 कश्मीरी छात्रों की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की एक घटना घटी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इन घटनाओं के बाद राज्यों से कहा कि कश्मीरी छात्रों की हिफाजत की जाए। उनका कहना था कि कश्मीरी बच्चे भी अपने हैं और उनके भी वही अधिकार हैं जो अन्य नागरिकों के हैं। रविवार को नीति आयोग की सभा के दौरान जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य सरकारों से अपील की कि कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री ने भी ऐसी ही अपील जारी की। नीति आयोग की सभा में भाग लेने आई महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो सूत्रों के अनुसार 40 मिनट तक जारी रही। इसके बाद मीडिया से बातें करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए पहले माहौल तैयार करने की जरूरत है।
पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है, एलके अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है।
कश्मीर में युवाओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच हालिया झड़पों में 9 युवा मारे गए थे। पिछले साल भी दोनों पक्षों के बीच कई महीनों तक झड़पें जारी रहीं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर करने का सुझाव दिया है। इस समय वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक का होता है और ये परंपरा 1867 से चली आ रही है। मैंने आर्थिक मामलों के जानकार भारत झुनझुनवाला से संपर्क किया और पूछा कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव देखते हैं आप?
मेरे ख्याल से इसके पीछे केवल एक मंशा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ भारत में आ रही हैं, उनको 2 साल में अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अपने पेरेंट कंट्री में इनको जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग करते हैं और इंडिया में इनको अप्रैल टू मार्च करना पड़ता है। तो उनके लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ये चेंज की बात की जा रही है, लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी विदेशों का ये हाल नहीं है। इंग्लैंड में अभी भी अप्रैल टू मार्च ही फाइनेंशियल ईयर चलता है, लेकिन ये माना जा सकता है कि अमेरिका में क्योंकि जनवरी टू दिसंबर है और वहाँ की मल्टीनेशनल का प्रभाव ज्यादा है, तो संभवतः उनके लिए सुविधाजनक बनाने के लिए इस काम को किया जा रहा है।
लेकिन अगर ये होता है तो तमाम तरह के परिवर्तन करने होंगे, मसलन बजट का दिन बदलना होगा, संसद का जो सत्र होता है वो बदलेगा, पूरा टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, इसमें खर्चा भी होगा।
मैं इसको विशेष नहीं मानता। देखिए, अगर सरकार चाहती है कि विदेशी निवेश आए और अगर इस चेंज को करने से विदेशी निवेश आता है तो ये सब वन टाइम कॉस्ट है और जिसके लिए कोई बहुत मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं लगती। हाँ, अड़चन तो होती ही है। जब हम लोगों ने पहले एक रुपया 16 आना और 4 पैसा का जो सिस्टम था, जब उससे नए पैसे पे गए तो कुछ दिन तक परेशानी रहती है, उस तरह का परेशानी रहेगी, लेकिन मैं उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ।
एक तर्क इसके पक्ष में ये दिया जा रहा है कि आजकल जो बजट पेश होता है उससे पहले सरकार को पता नहीं होता कि मानसून रहेगा कैसा, लेकिन शायद इस व्यवस्था में इसको एक तरह से इसका अनुमान लगाना शायद बेहतर होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो उल्टी बात है। देखिए, इस समय ये अप्रैल का महीना है और अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4-5 दिन पहले इस वर्ष के मानसून का अनुमान जारी किया है। तो अगर मार्च में हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो फिर भी 1 अप्रैल को कुछ पूर्वानुमान मानसून का हमको मिल सकता है। अगर हम जनवरी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे तो मानसून का तो अनुमान मिलने का कोई दूर दूर तक संभावना ही नहीं है, उल्टी बात। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप जनवरी में ईयर चेंज करेंगे तो पिछले साल की खरीफ और रबी दोनों फसल का उत्पादन के आंकड़े आपके सामने होंगे। जैसे मार्च में समस्या सिर्फ इतनी आती है कि जो रबी की फसल है उसकी कटाई चल रही होती है, फरवरी से शुरू होती है और अप्रैल मई तक चलती है, तो उसके ठीक बीच में हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो इसलिए इनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि वर्तमान वर्ष के रबी के उत्पादन का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता, तो वो तो उतना फायदा हो सकता है।
हलकों में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इसी साल GST इम्प्लीमेंट होना है, जुलाई से इसकी शुरुआत होनी है, और अगर इसकी भी शुरुआत कर दी गई तो सब कुछ गड़मड़ हो जाएगा और बड़ी दिक्कतें होंगी सरकार के लिए।
बात तो सही है, मैं समझता हूँ कि अगर इनको ये करना है तो 1 साल के लिए स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अननेसेसरी टेंशन और मेंटल ओवरलोड से नुकसान ही होगा। लेकिन इसमें एक और विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे परिवार में पहले जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो दिवाली टू दिवाली होता था। तो जो विचार करने का विषय ये है कि क्या हम मल्टीनेशनल्स को अपील करेंगे जनवरी टू दिसंबर जाकर, या अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे दिवाली टू दिवाली फाइनेंशियल ईयर करके। तो मैं ये पूछना चाहूंगा मोदी जी से कि आप अप्रैल से मार्च को चेंज कर रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की लेगेसी है, ये बात तो सही है, लेकिन उस लेगेसी को, ब्रिटिश लेगेसी को छोड़कर अमेरिकन लेगेसी को पकड़ने का क्या अर्थ है भाई? ज्यादा अच्छा है कि आप ब्रिटिश लेगेसी को पकड़ के ही इंडियन लेगेसी को पकड़िए तो ज्यादा उचित होता।
ये थे आर्थिक मामलों के जानकार भारत झुनझुनवाला।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने शुक्रवार को मदार शरीफ के पास सैनिक ठिकाने पर हुए हमले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस हमले में 140 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए थे। मैंने काबुल फोन कर BBC संवाददाता सईद अनवर से संपर्क किया और पूछा कि इन दोनों के इस्तीफे के पीछे वजह क्या थी।
अफगानिस्तान के शुमाली प्रांत बल्ख में अफगान आर्मी कोर पर तालिबान के हमले के बाद, जिसमें तकरीबन 140 फौजी अहलकार मारे गए, उसके बाद अफगानिस्तान के पार्लियामान और सोशल मीडिया में अफगान शहरियों की जानिब से प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसके बाद अफगानिस्तान के वजीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज इस्तीफा दे दिया। آج دونوں ایک پریس کانفرنس میں ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی پریشر حکومت کی جانب سے نہیں ڈالتا، ہم افغان عوام کی جو نظریات ہے اس کے احترام کی خاطر اپنے پوزیشن سے استعفی دیتے ہیں، تاہم جب بھی افغان حکومت کہے وہ کہیں بھی کسی بھی حالت میں دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔
اور امریکن ڈیفنس منسٹر بھی اچانک وہاں پہنچے ہیں بغیر کسی پروگرام کے۔
جی بالکل، امریکہ کے وزیر دفاع جیمس ماتیس آج اچانک کابل پہنچ گئے ہیں۔ کابل پہنچتے ہی وہ افغانستان کابل میں غیر ملکی افواج کی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیے اور یہاں امریکی اور نیٹو فورسز کے جو کمانڈر ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ توقع ہے کہ آج شام افغانستان کے صدر اور دیگر حکام سے بھی ملاقات کر کے افغانستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات، دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تاہم ابھی تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے کہ ان کے بات چیت کے اہم نکات کیا ہوں گے، لیکن اس سے تین چار دن قبل امریکہ کے سابق سفیر افغانستان کے لیے ظلمی خلیلزاد نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان کے حوالے سے نئی اسٹریٹیجی جو ہے وہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گی۔
تو یہ بالکل پکا ہے کہ یہ طالبان کا اٹیک تھا، کچھ حلقوں میں آئی ایس کی بھی بات کی جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
افغانستان کے شمالی صوبہ پرانت میں کور کمانڈ کے بیس پر جو حملہ ہوا اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے، اور طالبان نے کہا ہے کہ اس حملے میں ان کے 10 جنگجو حصہ لیے تھے، اور طالبان کے مطابق ان 10 لوگوں میں سے 4 لوگ ایسے تھے جو اس بیس میں کچھ مدت کے لیے فوجی اہلکار کے طور پر کام کر چکے تھے۔ اس حوالے سے آئی ایس کی جانب سے کوئی کلیم نہیں آیا ہے، تاہم اس سے پہلے مہینے پہلے کابل میں جو سب سے بڑی ملٹری ہسپتال پر جو حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری البتہ آئی ایس نے قبول کی تھی۔
یہ تھے کابل سے بی بی سی سنواد داتا سعید انور۔ آج سوموار ہے اور آج کے دن آپ سنتے ہیں اپنے پتروں کے اتر۔ آپ کے پتروں کے ساتھ ہیں مکیش شرما اور سمیرن پریت کور۔
آپ کی رائے میں آپ سب کا سواگت ہے، میں ہوں سمیرن اور میرے ساتھ ہے بی بی سی ہندی سیوا کے سمپادک مکیش شرما۔
نمسکار۔
جی نمسکار، اور شروعات کریں پھر؟
جی بالکل،
تو ای میل سے شروعات کرتے ہیں، اور یہ ای میل ہمیں لکھا ہے آشوتوش کمار پانڈیا نے پکڑی چوک آرہ بہار سے۔ یہ لکھتے ہیں پشاور سے، وسعت اللہ خان کی ڈائری کا کوئی جواب نہیں، مگر واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، اگر نیمت خبریں ہوں تو اچھا رہے گا۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ راجیش جوشی اور روپا جھا سے میری نجی شکایت ہے کہ وہ لوگ ریڈیو پر کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور آپ سے بھی شکایت ہے مکیش شرما کی آپ ریڈیو سے شرما کیوں رہے ہیں۔ ساتھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سواتی بخشی آج کل سنائی نہیں دے رہی۔
آشوتوش جی نے، یہ ہمارے کافی پرانے دراصل شروتا ہیں، اس لیے انہوں نے سب کا حال پتہ لے لیا ہے۔ وسعت صاحب کی ڈائری کا تو خیر کوئی جواب نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے جی سمے سمے پر خبریں بھیجتے رہتے ہیں، ان کی شاید اس ہفتے ایک بار ابھی بیچ میں گیپ ہوا ہے جبکہ ڈائری نہیں آئی ہے، پر وہ جب سے ٹرمپ وہاں پر راشٹرپتی پد کا کاربھار انہوں نے سنبھالا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ لگاتار خبریں فائل کرتے رہے۔ راجیش جوشی جی سے کیوں یہ شکایت کر رہے ہیں؟ کیونکہ راجیش جی تو ابھی میرے خیال سے پچھلے ہفتے بھی انہوں نے کاریکرم پرستت کیا تھا اور اس ہفتے بھی کریں گے ہی۔ روپا جی ضرور، چونکہ جتنی بھی بھارت میں وبھن بھاشائیں ہیں ان کی سمپادک ہو گئی ہیں، تو ان کے پاس میں کام تھوڑا سا اس طرح کا بڑھ گیا ہے کہ وہ صرف ہندی پر دھیان نہیں دے پا رہی ہیں بلکہ جتنی بھاشائیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہیں، اور میں تو آ ہی رہا ہوں۔ اور سواتی ان دنوں لندن میں ہیں، پڑھائی کر رہی ہیں، اور ہم سب کی شبھ کامنائیں ان کی پڑھائی میں ان کے ساتھ ہیں۔
جی، اور اب اگلے خط کی اور چلتے ہیں۔ یہ ای میل ہمیں لکھا ہے ہماری مہیلا شروتا ہیں گوری سین، جو کہتی ہیں میرے پتی محمد پرویز ایک لمبے عرصے سے بی بی سی ہندی کے نیمت شروتا رہے ہیں، اس لیے میں بھی حصہ بن گئی ہوں اس کا، اور اب تو ہمارا 2.5 ورشیہ پتر عرش بھی آپ کا پرسارن سنتے وقت گمبھیر ہو جاتا ہے۔
اور اس پتر کی جو ایک اور خاص بات مجھے دکھ رہی ہے سمرن جی، وہ یہ ہے کہ گوری نے لکھا ہے کہ وہ درشٹی بادھت شروتا ہیں جی، اور آج ہی ویب سائٹ پر ایک جو پروفیسر ڈی این جھا کا ایک لیکھ چھپا ہے، نظر چھپا ہے ان کا بھارت میں گورکشا آندولن سے جڑا ہوا، اس کی انہوں نے کافی تعریف کی ہے، اور اس پوری جو سیریز ہے، پوری شرنکھلا ہے، اس کی بھی وہ تعریف کر رہی ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہمارے ساتھ گوری اس طرح سے سپریوار ایک طرح سے جڑی ہوئی ہیں۔
تو اب تعریف کی باری ہے، तीन लोगों ने तारीफ की है संग संग गुनगुनाओ की।
अच्छा।
तो पहला खत लिखा है गणेश प्रसाद हुजदर ने, दूसरा खत लिखा है राजेंद्र प्रसाद भट्ट ने नैनीताल से, और तीसरा खत आया है दीपक मेहरा का जो लिखते हैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से। ये कहते हैं कि कल 23 अप्रैल को शंकर जयकिशन के बारे में कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। 11 मिनट के कार्यक्रम में शंकर जयकिशन के पूरे करियर को समेट लिया गया। ये लिख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद भट्ट, जो कहते हैं मैंने पहले भी रेहान फजल जी से विवेचना में शंकर जयकिशन के बारे में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए लिखा था, उन्होंने तो नहीं किया लेकिन ये श्रृंखला जो है उन्हें पसंद आई है। आगे राजेंद्र जी लिखते हैं कि आजकल बीबीसी कश्मीर पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है, कभी बलूचिस्तान से भी कुछ रिपोर्ट्स आ जाएं तो।
देखिए संग संग गुनगुनाओ के कार्यक्रम श्रोताओं को बहुत पसंद आ रहा है, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है, और वो है भी बहुत ही मेहनत से यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। कश्मीर पर दरअसल घटनाएं इतनी तेजी से हो रही हैं और वहां पर इतना कुछ घटनाक्रम तेजी से बदला है कि उसके ऊपर नजर रखना एक सजग मीडिया संस्थान के तौर पर, और हमारे श्रोता निश्चित रूप से हमसे ये अपेक्षा भी रखेंगे कि कोई खबर हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, और कश्मीर उसी श्रृंखला में चूंकि वहाँ जो कुछ भी इन दिनों उबाल पर है वो रिपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।
अच्छा, ये ईमेल जो है ऑस्ट्रेलिया से आया है। ये कहते हैं मैं भूपेंद्र छाबड़ा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से हूँ, और मैं नियमित रूप से आपका हिंदी कार्यक्रम जो हिंदी रेडियो का कार्यक्रम है वो सुनता हूँ, हालांकि टाइम में थोड़ी बहुत मतलब डिफरेंस होता है। आगे लिखते हैं कि जो आपने तेज बहादुर केस पर जो कवरेज दी, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वो उन्हें बेहद पसंद आया, उन्हें लगता है कि एक तरह का प्लेटफॉर्म था कि उनकी आवाज लोगों तक पहुंची, और वो कहते हैं सुझाव दे रहे हैं या एक तरह से रिक्वेस्ट है उनकी कि अगर पंजाब हिमाचल और दक्षिण भारत से और खबरें आए तो साथ ही इंडिया बोल का जो सेगमेंट है उसमें जो स्पीकर्स होते हैं, जो अतिथि आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, उनको और बोलने का मौका दिया जाए।
अतिथियों को और बोलने का मौका मिले ये जरूर हमारी कोशिश रहेगी, और देश के हर उस हिस्से में जहां कुछ घटनाक्रम हो रहा है वहां से खबर लाने की कोशिश हमारी हमेशा रहती है अपने इस आधे घंटे के कार्यक्रम में। और बीबीसी की जो नई सेवाएं आने वाली हैं उनके आने के बाद ये जो जगह है ये और बढ़ेगी, इसका हमें विश्वास है। और चलते चलते सुमिरन अपना पता एक बार बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर ईमेल करना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लय में लौटने के साथ जीत की पटरी पर लौटी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आज मुंबई के खिलाफ उसी के घर में जीत की हैट्रिक लगाने उतर रही है। मुंबई की टीम मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में है, अपने 7 मैचों में उसने 6 जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 1 पर काबिज है। मुंबई ने अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ 142 रन का साधारण स्कोर बनाने के बाद भी उसका बचाव किया और दिल्ली को 14 रन से मात दी। मुंबई की टीम के बारे में वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन कहते हैं,
जितने भी मैचेस जीते कहीं न कहीं मुंबई काफी तकलीफ में देखा था पोजीशन, लेकिन कोई एक प्लेयर खड़ा हो जाता है, या नीतीश राणा हो या पांड्या ब्रदर्स हो या पार्थिव पटेल हो या हरभजन या पोलार्ड, सबने कहीं ना कहीं एक मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। हमने देखा था मिच मैक्लेनिगन ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की दिल्ली के खिलाफ और छोटा सा टोटल जो है वो उन्होंने प्रोटेक्ट किया और जीत दिलवाई मुंबई को। तो मुंबई को हराना इतना आसान नहीं है, मुंबई को मुंबई में हराना मुझे लग रहा है ज्यादा डिफिकल्ट है।
वहीं पुणे ने अपने पिछले मुकाबले में धोनी के धमाके से हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। धोनी ने इस मैच में 34 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 61 रन की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेली। पुणे की टीम 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ 5वें नंबर पर है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के हमले में सीआरपीएफ के कम 26 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में 6 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि कम से कम 7 जवान लापता हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ के जवान सड़क खुलवाने के लिए जा रहे थे। भारत प्रशासित कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने पीडीपी नेता अब्दुल गनी डार की गोली मारकर हत्या कर दी है। अफगानिस्तान में सशस्त्र सेना पर तालिबान के हमले के बाद देश के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। जर्मनी की एक अदालत ने यूरोप में टेक्नो म्यूजिक के सबसे बड़े आयोजन लव परेड के आयोजकों को नरसंहार और लापरवाही का दोषी माना है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।